हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन रेडियो प्रोग्राम
जिसका नाम है जब चलें शहर की ओर।
क्या नरेन, मैं कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रही थी, तुमने बीच में बोलकर सारा मजा खराब कर दिया।
हेलो मैडम, ये अंग्रेजी बोलने का भूत कहाँ से चढ़ गया आपको?
सच बताऊँ?
हाँ हाँ बताओ।
मैंने कल ही एक इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है।
क्या, इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट?
हाँ।
लेकिन अंजलि, मुझे जहाँ तक मालूम है तुम तो अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेती हो, तो फिर ये इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का ड्रामा क्यों?
नरेन, मैंने सोचा कि किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर ये पता किया जाए कि आखिर उनके पास अंग्रेजी सिखाने की ऐसी कौन सी जादुई दवा है जिसे पीकर लोग 15 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं।
वैसे अंजलि, इस बारे में हम अपने श्रोताओं से भी पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या लगता है, 15 दिन की अंग्रेजी क्लास में जाकर अंग्रेजी सीख पाना मुमकिन है?
लेकिन पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कार्यक्रम जब चले शहर की ओर इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और अगर आप प्रवास से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर 9197176782 पर SMS कर सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 44वीं कड़ी।
पिछले एपिसोड में आपने सुना, चंदर गजेंद्र को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से वो कुछ शारीरिक परेशानियां अनुभव कर रहा है। गजेंद्र कहता है कि ये सब कुछ GB रोड वाली गलती का नतीजा है और उसे तुरंत डॉक्टर से बात करने के लिए कहता है। उधर मधु चंदर को फोन करती है। फोन पर चंदर मधु से माफी मांगता है। मधु चंदर को माफ कर देती है और दोनों के बीच सभी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
चल भाई गज्जू, किसी तरह से ये 15 दिन तो बीत गए।
और हमारी अंग्रेजी की कक्षा भी।
भाई कक्षा नहीं, क्लास।
अरे हाँ भाई, अंग्रेजी की क्लासें भी पूरी हो गई बस।
तो अब समझ यार, ये नौकरी हाथ लगी गई बस।
हाँ वो तो है चंदर, पर फिर भी पता नहीं रह रह के मुझे अभी भी दयाल पांडे की बातों में कुछ काला नजर आता है।
अरे छोड़ना यार, तू तो हर किसी पर शक करने लगता है। अरे हाँ,
अब क्या हुआ
यार? वो मुझे वो क्लिनिक, वो तुझे बताया था ना।
क्या, तू अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गया?
हाँ यार, वो इंग्लिश की क्लास की वजह से।
लेकिन चंदर, तुझे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना। चल अब पहले डॉक्टर के पास चलते हैं।
लेकिन गज्जू, अभी हमें दयाल पांडे से भी तो मिलना है।
उससे हम बाद में मिल लेंगे।
कविता, आकाश में चांद को देख रही हो?
हाँ।
कितना खूबसूरत लग रहा है ना?
हाँ।
लेकिन तुम्हारे से ज्यादा खूबसूरत नहीं है
राजेश। क्या तुम भी।
अच्छा एक बात कहूँ कविता?
बोलो।
तुम्हारे मम्मी पापा का बॉम्बे आना, उनके साथ ढेर सारा समय बिताना, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा मानो मुझे एक बार फिर से माँ बाप मिल गए।
वैसे राजेश, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह समझा, उन्हें वही मान सम्मान दिया जो एक बेटा अपने माँ बाप को देता है।
अच्छा कविता, वैसे गांव में हमारी शादी में कितने लोग आएंगे?
गांव में तो लगभग सभी सगे संबंधी होंगे। क्यों?
इसका मतलब हमारी शादी में काफी लोग आने वाले, खूब रौनक होगी।
वो तो होगी।
तो उन सबके रहने और खाने पीने के इंतजाम के लिए कोई मैरिज हॉल बुक करना पड़ेगा ना?
राजेश, गाँव में मैरिज हॉल नहीं होते।
तो फिर इतने सारे लोग रहेंगे कहाँ?
गांव में इन सब कामों के लिए पंचायत घर होते हैं।
पंचायत घर?
हाँ, लोग ऐसे काम पंचायत घर में ही पूरे करते हैं।
गुड। अच्छा सुनो, हमारी शादी के बारे में मैंने कुछ सोचा है।
वो क्या?
मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी शादी में लोगों से गिफ्ट या पैसे नहीं लेंगे, बल्कि हम उन सभी को कोई ऐसी चीज देंगे जिससे वो हमारी शादी को हमेशा याद रखें।
ख्याल तो अच्छा है, लेकिन हम देंगे क्या?
कविता, अब सोचने का सारा काम मैं ही करूंगा क्या? अरे भाई तुम भी तो मेरी कुछ मदद करो इस बारे में।
ओके। हम ना उनको हम तुम ही बताओ ना क्या देंगे।
ओके बाबा ओके, मैं ही सोचता हूँ और सोचते सोचते तुम्हारे घुटने दबा देता हूँ।
अरे तुम मेरे घुटने क्यों दबाओगे?
क्योंकि तुम लड़कियाँ अगर जरा सा भी सोचने लगती हो ना तो तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लगता है।
घुटनों में?
हाँ, क्योंकि लड़कियों की अकल घुटनों में होती है ना
राजेश। अरे मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। तुम्हें
ओके मैं तो राजेश मजाक कर रहा था।
चंदर, अरे भाई चंदर कौन है?
हाँ जी मैं।
तुम्हारा नंबर आ गया
जी। गज्जू तू यहीं बैठ, मैं डॉक्टर के पास से होकर आता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब।
नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए
जी।
अच्छा नाम क्या है तुम्हारा?
जी चंदर।
अच्छा कब से है ये परेशानी तुमको?
जी ये परेशानी तो कई दिनों से है, पर पिछले कुछ दिनों से ज्यादा है और जगह जगह घाव भी हो गए हैं।
अच्छा दिखाओ तो जरा।
जी।
अरे भाई बीमारी देखने के बाद ही पता चलेगा ना कि स्थिति क्या है।
लेकिन डॉक्टर साहब।
अरे चंदर तुम बेकार में शर्मा रहे हो। देखो एसटीआई खतरनाक होती है, इससे पहले कि ये नियंत्रण से बाहर हो जाए इसका सही उपचार होना बहुत जरूरी है, समझे?
जी।
चलो अब दिखाओ।
जी।
घाव काफी बढ़ गए हैं, पेशाब के दौरान दर्द भी होता है।
जी जी हाँ।
ठीक है मैं अभी कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने खून की जांच करवानी होगी, तभी तुम्हारा इलाज सही ढंग से शुरू किया जा सकेगा। और हाँ चंदर, एसटीआई हो तो एचआईवी की जांच भी करा लेनी चाहिए।
डॉक्टर साहब कुछ खतरे वाली बात?
देखो चंदर अब ये तो टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, पहले कुछ नहीं कहा जा सकता।
जी
हाँ, और अभी जो दवाइयां मैंने लिखी हैं उन्हें बराबर लेते रहना।
अच्छा जी मैं चलता हूँ। नमस्ते।
नमस्ते। नेक्स्ट।
चंदर क्या कहा डॉक्टर ने?
गज्जू डॉक्टर ने खून की जांच कराने के लिए बोला है।
खून की जांच?
हाँ ताकि एचआईवी का पता चल सके।
ओह
पता नहीं उस एक गलती की मुझे कितनी सजा मिलेगी।
चंदर भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा।
अरे ये मधु के कमरे का दिया अभी तक जल रहा है, शायद भूल गई होगी। चलो मैं ही बुझा देती हूँ।
अरे मीरा दीदी आप इस वक्त?
तुम अभी तक जाग रही हो, पता है कितना वक्त हुआ है?
दीदी परीक्षाएं आने वाली है ना, उन्हीं की तैयारी कर रही थी।
अरे तो दिन में भी तो तैयारी कर सकती हो, इतनी रात को दिए की रोशनी में पढ़ना कितना मुश्किल होता होगा।
अरे नहीं नहीं दीदी बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी दिन में घर का काम भी तो होता है।
अरे घर का काम मैं संभाल लूंगी, उसकी चिंता बिल्कुल मत कर।
दीदी ये तो आपका प्यार है, लेकिन घर के प्रति मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना।
मधु तेरी लगन देखकर मुझे पूरा यकीन है तू जरूर अच्छे नंबरों से पास होगी। अच्छा मैं चलती हूँ, नकुल को प्यास लगी है, तेरे कमरे में दिया जलता देखा तो चली आई।
जी दीदी।
हाँ आओ आओ। हाँ भाई चंदर गजेंद्र बैठो तुम लोग।
जी सर।
भाई ये तुमने बहुत अच्छा किया जो अंग्रेजी सीख ली।
सर ये तो आप ही की मेहरबानी से संभव हो पाया है।
तो सर अब तो हमें ये नौकरी मिल जाएगी ना?
मिल जाएगी? अरे मिल गई समझो।
सच?
हाँ और क्या। अच्छा ये बताओ तुम्हें तैरना तो आता है ना?
सर तैरना तो?
क्या तैरना नहीं आता? अरे भाई तुम्हारी नौकरी शिप पर होगी, समझ रहे हो ना, शिप यानी जहाज पर। और जहाज कहाँ चलता है बताओ?
जी पानी में।
हाँ पानी में, अगर सड़क पर चलता होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, फिर चाहे तुम्हें तैरना आता होता या नहीं।
तो सर अब
क्या भाई, अगर नौकरी चाहिए तो तैरना सीखना होगा।
लेकिन सर अब हम तैरना कैसे सीखेंगे?
उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो? अरे मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पर है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और देखना एक हफ्ते में ही तैरना सीख लोगे। यूं
सचमुच सर?
बिल्कुल सच। बस इसके लिए तुम्हें थोड़े पैसे खर्च करने होंगे।
जी
अब भाई कुछ सीखना है तो पैसे तो खर्च करने ही होंगे ना।
लेकिन हम 3200 रुपए पहले ही दे चुके हैं।
अरे भाई वो तो अंग्रेजी सीखने के थे ना, अब अंग्रेजी सीखना और तैराकी सीखना दोनों अलग अलग काम है कि नहीं।
तो अभी कितने पैसे और जमा करवाने होंगे?
बस ये कोई 4,000 रुपए?
4,000 रुपए? हाँ चंदर चल यहाँ से।
अरे गज्जू
तू चल यहाँ से। चंदर माफ करना पांडे जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है।
अरे क्या कह रहा है गज्जू, पागल हो गया क्या? एक मिनट सर, मैं इसे समझाता हूँ। तू एक मिनट यहाँ मेरे साथ।
हाँ बोल।
पागल हो गया क्या? अरे बस एक हफ्ते की तो बात है, बना बनाया खेल क्यों बिगाड़ रहा है?
लेकिन चंदर इस बात की क्या गारंटी है कि तैरना सीखने के बाद हमें नौकरी मिली जाएगी?
अरे वो कह तो रहा है ना।
कहा तो उसने ये भी था ना कि अंग्रेजी सीखने के बाद नौकरी लग जाएगी, लेकिन क्या हुआ उसका?
लेकिन उसकी बात भी तो सही है यार, जहाज की नौकरी है, तैरना तो आना चाहिए ना। देख बस ये आखिरी बार मेरी बात मान ले
यार। चंदर तू चल ठीक है, लेकिन बस आखिरी बार, समझे?
अरे भाई आप लोग और कितनी देर विचार विमर्श करेंगे, देखिए बाहर और लोग भी बैठे हैं इसी नौकरी के लिए।
जी बस सर हो गया, ये लीजिए 4,000 रुपए।
ठीक है। देखो भाई कल इस पते पर पहुंच जाना, और कल से ही तुम्हारी स्विमिंग क्लासेस शुरू हो जाएंगी।
जी स्विमिंग?
तैराकी?
हाँ जी।
ठीक है अब आप लोग जाइए।
जी अच्छा, नमस्ते सर।
नमस्ते। यही इंग्लिश सीखी है इन 15 दिनों में। चलो भाई नेक्स्ट।
एक है का कुसारू हो, तेरी माया महा मोंदुया ने माल तेरी माया महा गड गंगाल बे मर दियो फल मैं तेरी माया मा हां बे गड गदिन मा बग जो बांध मैं तेरी माया मा हां बे क्यों उलझी लाटुली सी तेरी माया मा क्यों उलझी लाटुली सी तेरी माया मा हां बे लग दी अब बग
दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने श्रोताओं से कि उन्हें क्या लगता है
कि क्या 15 दिनों की अंग्रेजी क्लास में जाकर वो झटपट अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं।
तो आइए सुनते हैं कि जब हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने हमारे श्रोताओं से इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिए।
अंग्रेजी केवल क्लास में जाने से नहीं सीखी जा सकती। 15 दिन क्या, वो 6 महीने भी जाए क्लास में तब भी अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती। अंग्रेजी सीखने के लिए पहले माइंड से जो है पूरा तरह तैयार होना चाहिए। उसके लिए अंग्रेजी सीखने के लिए वो घर में भी सीख सकता है, ये कोई जरूरी नहीं। कोचिंग क्लास तो एक केवल पैसा कमाने का जरिया लगता है मुझे, और मुझे 1% का विश्वास नहीं है।
बिल्कुल सीखी जा सकती है, ये क्वाइट पॉसिबल है कि आप 15 दिन में अच्छी तरह से सीख सकते हैं। 15 दिन का समय बहुत होता है, यदि लगन हो आदमी में और रुचि हो अभ्यास के द्वारा 15 दिन में बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी सीखी जा सकती है। और बोला भी है अभ्यास योग युक्तेन, कुछ भी हम जितना अच्छा हमारा अभ्यास होगा उतना अच्छा हमको लाभ होगा, चाहे हम अंग्रेजी सीखने की बात हो या कुछ और भी हो, अभ्यास से हम सीख सकते हैं।
परफेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ 15 दिनों में इंसान अगर किसी में लगन हो हल्की फुल्की तो वो सीख सकता है।
जहाँ तक इंग्लिश सीखने का सवाल है तो जैसे आजकल जगह जगह आप देखते होंगे कि लुभावनी बात कहकर आजकल के युवाओं को भ्रमित करके हमेशा बोलते रहते हैं कि इतने दिन में हम इंग्लिश सिखा देंगे। लेकिन मैं युवाओं को भी इस चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह की बातों में ना आए। और जहाँ तक इंग्लिश सीखने का सवाल है, इंग्लिश तो आदमी स्वयं सीख सकता है, और उसके लिए सबसे बड़ी जो बात है उसके लिए दैनिक बोलचाल भाषा में यदि हम इंग्लिश का उपयोग करते तो उसे सीखने में काफ़ी हमें मदद सकती है।
देखते जाओ तुम ऐसा भी एक दिन तो जरूर आएगा हमसे इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे श्रोताओं के जवाब, जिन्हें जानने की कोशिश की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
और अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो हमारे इस सवाल का जवाब अपनी समझ के आधार पर नहीं बल्कि अपने अनुभव के आधार पर देंगे।
तो भाई देर किस बात की, आइए मिलते हैं अपने आज के मेहमान से।
दोस्तों आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र पुंडीर जो कि ग्राम भनत छोटा छोटा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि कैसा रहा उनका कोचिंग क्लास का अनुभव। अच्छा वीरेंद्र जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप वर्तमान में कहाँ काम करते हैं।
मैं इस समय गढ़वाल कम्युनिकेशन में काम करता हूँ, जो मेरा अभी का करंट रोजगार है।
क्या आपने कभी किसी तरह की कोचिंग क्लास ली है?
हाँ, एक बार मैंने बीपीएड के लिए ज्वाइन किया था अमरावती महाराष्ट्र के लिए। मेरे कुछ दोस्त अमरावती में बीपीएड कर रहे थे, मैं भी बीपीएड करने की सोच रहा था, तो मेरे दोस्त ने मेरे को जानकारी दी कि इससे पहले फॉर्म भरे जाते हैं और वहाँ पे डाक भेजी जाती है। मैंने उसमें डाक भेजी तो उस डाक में मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके पीछे मैंने अपनी उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया, लेकिन जिस चीज़ को सीखने के लिए मैं वहाँ पे गया था वो चीज़ मेरे को मिली नहीं।
तो क्या इससे आपको रोजगार के क्षेत्र में कोई लाभ हुआ?
इससे मेरे को रोजगार क्षेत्र में कोई लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन लाभ होने की पूरी संभावना भी थी कि अगर मैं इस कोचिंग को पूरा कर लेता तो शायद मैं रोजगार के क्षेत्र में, यानी कि आज डेट में मैं कहीं बीपीएड या उसमें कहीं टीचिंग लर्निंग में होता। लेकिन मेरे को इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं इससे पहले कि मैं क्लास पढ़ता उन्होंने मेरा फॉर्म ही गैप कर लिया था। ऐसी मतलब कई मेरे साथ कई परेशानी है जिससे कि मुझे आज तक भी इससे मानसिक तनाव रहता है।
अच्छा अंत में आप हमारे श्रोता को संदेश देना चाहेंगे?
बिल्कुल मैडम, मैं आप भी किसी भी नई युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ भी करो सोच समझ के काम करो, क्योंकि जो भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं इनमें सोच समझ के काम करना चाहिए और अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और ये भी बताता हूँ कि सभी से पूछताछ करके, अपने से बड़ों से पूछताछ करके ही अच्छी जानकारी लेनी चाहिए, ये मेरा उनके लिए संदेश है।
वीरेंद्र जी आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे प्रोग्राम में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मन फिर का इशारा जमे रहो।
और दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट यानी कि काम की बात का,
जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं HIV टेस्ट के बारे में।
जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों को HIV टेस्ट का नाम सुनकर डर लगने लगता है,
लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक साधारण सा टेस्ट है जिसकी जांच आपके खून के द्वारा होती है।
इसकी जांच के लिए आपके खून की कुछ बूंदें ली जाती हैं, जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि आप HIV पॉजिटिव तो नहीं हैं।
नरेन, हम अपने दोस्तों को सबसे खास बात बताना तो भूल ही गए।
वो क्या?
यही कि सभी सरकारी अस्पतालों में ये टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होता है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप JJ हॉस्पिटल में स्थित ARTसेंटर में, जो कि बायकुला में है, या फिर नायर अस्पताल में, जो कि मुंबई सेंट्रल में स्थित है, HIV टेस्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो ARTसेंटर में फोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। वहाँ का नंबर है 02223237936।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप HIV टेस्ट के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का नंबर है 01123404610।
साथ ही दोस्तों, इसकी जांच के लिए आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी के एम्स हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, और वहां का नंबर है 01126593303।
तो ये तो थी आज की काम की बात। अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं। नंबर है 9197167823।
इसके अलावा अगर आप HIV/AIDS या फिर STI से जुड़े मुद्दों पर और जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हर रविवार AIR FM रेनबो ट्यून कर सकते हैं,
जहां आप सुन सकते हैं HIV जैसे गंभीर विषय पर आधारित हमारा कार्यक्रम नई दिशा।
और दोस्तों, बारी है अब आपकी चिट्ठी की।
लेकिन अंजलि, चिट्ठी से पहले हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे एक ईमेल जो हमें भेजा है शैलेश पोखरियाल ने दिल्ली से। ये चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से उत्तराखंड के सभी युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित ऐसी जानकारियां दें जिससे कि ये घर पर ही रहकर रोजगार कर सकें। इसके अलावा इन्होंने हमसे मेडिसिन प्लांट की खेती के बारे में भी जानकारी मांगी है।
शैलेश पोखरियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा प्रोग्राम पसंद किया और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके प्रश्न और सुझाव को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। और अब हम बढ़ते हैं आज की चिट्ठी की तरफ। नरेन, हमारे आज के विजेता हैं मंडावली दिल्ली से अतीक। ये लिखते हैं, मैं आपका कार्यक्रम नियमित सुनता हूँ, सभी सेगमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को दिल्ली की जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने गांव वापस जाकर एक गैर सरकारी संस्था बनाकर उसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।
अतीक जी, हम आपको बता दें कि मंडावली में पर्वतीय कल्याण समिति जैसे कुछ प्रवासी क्लब सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, अतीक जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
चिट्ठियां लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaharkiyor@gmail.com।
जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चकले रख ले हथेली से ढक ले से धूल धूप है शम से बिखर दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही।
और दोस्तों अब हम आपको सुनवाते हैं आज के संदेश।
मेरा नाम आयुष कुमार है। मेरे गांव का नाम मेरिल स्टेट बार्लोगंज मसूरी है। मैं अपने दोस्त को संदेश देना चाहूँगा, उसका नाम आर्यन है, वो भी मसूरी मेरिल स्टेट में रहते हैं। मैं उससे कहना चाहूँगा कि मैं मसूरी आ रहा हूँ और वो मुझे मिल जाए। चंबा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है मेला, तो मैं अपने दोस्त को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूँगा कि वो इधर आए और हमारे साथ मेले में पार्टिसिपेट करें।
मेरा नाम कुआरा दीप छा और मेरे गांव का नाम पिपलेत छा। मैं अपने नौनी बोलना चाहूँगा बिशिंदे मेरे नौनी नौ पहले दबा रहा। मैं क्या बोलना चाहूँ कि अब देवर जी की शादी छा, अब देवर जी की शादी अब आने वाले घर कब तय होने कत तारीख आने तो है ना।
मेरा नाम आनंद सिंह मंडारी, ग्राम छोटा छोटा पोस्ट ऑफिस चम्मा जिला टेरीगढ़। संदेश में अपने भेजी थे घनश्याम दिल्ली, उनका नाम अबल सिंह मंडारी, वो दिल्ली में संत नगर में रहना। कई दिन बड़ी जो फोन पाने आए ये वहाँ तो उनका नौना की तबीयत कम थी और उनके लड़के से निमा में ग्रस्त हुए कहीं कि नहीं हुई ये मारा उनसे जो था फोन पर बातचीत कम चाहूँ।
मेरा नाम गीता भंडारी, मैं ग्राम छोटा छोटा में रहना। मैं अपनी जिठानी तई उनको नाम पदमा देवी जो कि संत नगर बुराड़ी रहना दिल्ली में। मैं उन तय संदेश देना चाहूँ कि मेरी जिठानी का नौनियाल की तबीयत खराब थे। मैं ये बोल कि वही की तबीयत तक ख्याल रखे है ना, कहने वही की तबीयत कुछ फर्क छा या नहीं है फोन करी थे बताई ध्यान। बाकी हम सब ठीक हो और वही की तबीयत को ख्याल रखे अपने भी सब परिवार तक खूब रखे राजी खुशी करी थे।
और दोस्तों अब हो चुका है वो समय जब हमें आपसे विदा लेने के लिए कहना पड़ता है।
सचमुच दोस्तों आपसे बातें करते हुए समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन क्या करें जाना तो होगा ना।
लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि अगर आप भी अपने संदेश हमारे कार्यक्रम के जरिए अपने परिवार वालों दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुँचाना चाहते हैं या फिर आप प्रवास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197178223।
इसके अलावा हमें अपने खट्टे मीठे अनुभवों से भरी चिट्ठियां भी जरूर लिखते रहिएगा।
और अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें अपने अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaharkiyor@gmail.com यानी shaharkiyor@gmail.com।
और पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
और अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो आप वो सभी जानकारियाँ चिट्ठियों या फिर ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं।
साथ ही हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज भणज का भी धन्यवाद करते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि अब जाने का वक्त हो गया है तो अब मुझे और अंजलि को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते नई जानकारियों के साथ हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।